झलक के हाथों में फ्रूट की टोकरी देखकर स्नेहा ने उससे सवाल किया। तब झलक चहक कर बोली, मॉम आप परेशान मत होइए, ये फ्रूट्स हमारे घर के लिए नहीं है। असल में हमारे कुछ दुश्मन बीमार हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये फ्रूट्स मैं वहाँ लेकर चली जाऊँ और उनसे जाकर मिलाऊँ। अब जैसे ही झलक ने ये कहा, एक पल के लिए सौरभ जी चौंक गए थे। उन्होंने तुरंत चिंता भरे स्वर में कहा,
लेकिन बेटा तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कल उनकी क्या हालत हुई है। ऐसे में तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं उनके मन में कितना गुस्सा भरा होगा, और अगर उन्होंने तुम्हें वहाँ देख लिया तो वो तुम पर हमला भी कर सकते हैं। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है।
अपने पिता की चिंता सुनकर झलक तुरंत उठी, उनका हाथ थामकर बोली, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिनकी असली शक्ल दिखाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, क्या मैं उन्हें देखूंगी भी नहीं? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, इतनी आसानी से मैं उन्हें मरने भी नहीं दूंगी। झलक ने जैसे ही रहस्यमय अंदाज में ये कहा, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर अलग अलग तरह के भाव उभर आए, क्योंकि जिस हाल में उन्होंने उन्हें पहुंचाया था उसके बाद कोई इतनी आसानी से ये बात नहीं कह सकता था। तभी झलक मुस्कुराकर बोली, मैं चलती हूँ, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आरव जी बोले,
अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ बेटा।
दादाजी ने भी साथ चलने का ऑफर दिया, लेकिन झलक ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, नहीं आप लोग यहीं रुकिए, आप लोग शहर में आए हैं, थोड़ा घूमिए फिरिए, इंजॉय कीजिए, मैं अपना काम करके आती हूँ। तभी अनामिका तुरंत खड़ी हो गई और बोली, मैडम आप दादाजी और बाकी सबको मना कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, ठीक है? और वैसे भी वहाँ रणविजय भी होगा ना, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, इतनी बेइज्जती और सच सामने आने के बाद वो कैसा दिख रहा होगा, सोचकर ही मजा आ रहा है। अनामिका की बात सुनकर झलक मुस्कुरा दी और बोली, वाकई यार क्या बात है, चलो फिर साथ चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो खुद तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा होगा, तो क्या ना उसे थोड़ा और तड़पने दिया जाए? ये कहकर झलक ने अनामिका को वहीं रुकने का इशारा किया। तब अनामिका बोली थी, आई थिंक तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, उसे अभी तड़पने दो, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी, ओके? ये सुनकर झलक मुस्कुराई और फलों का टोकरा उठाया और सीधे अस्पताल की ओर निकल गई। वहीं दूसरी ओर नैना ओबेरॉय को होश आ चुका था। आकांक्षा तुरंत उठकर अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। नैना ने खामोशी से अपनी बेटी के चेहरे की ओर देखा, फिर उसके कपड़ों पर नजर गई जो अब भी पार्टी वाले ही थे, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, ये क्या हाल बना रखा है तुमने मेरे बच्चे, तुमने अब तक कपड़े तक नहीं बदले। दरअसल नैना के कपड़े तो अस्पताल स्टाफ ने बदल दिए थे और उन्हें अस्पताल का गाउन पहना दिया गया था, लेकिन आकांक्षा अब भी उसी हालत में थी। ये देखकर नैना और ज्यादा रो पड़ी। कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो टूटे हुए स्वर में बोली, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आदमी जिंदा होगा, और न सिर्फ जिंदा होगा बल्कि हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश भी रचेगा। कमरे में मौजूद हर किसी का दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। ईशान गुस्से और नफरत से भरे स्वर में बोला,
तुम देखना हम उसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे।
फिर उसने आकांक्षा की ओर देखते हुए कहा,
तुम पहले जाओ और कपड़े बदल लो, इस तरह रहना ठीक नहीं है।
दोनों ही अपनी बेटी को समझाने लगे कि उसे इस हालत में नहीं रहना चाहिए और जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए, लेकिन आकांक्षा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी नैना बोली, तुमने बताया था ना कि उर्वशी खुराना भी यहीं एडमिट है, चलो उनसे मिलकर आते हैं, उन्होंने वादा किया है कि वो सिद्धार्थ की शादी मेरी बेटी से करवाएंगी। अगर एक बार आकांक्षा की शादी सिद्धार्थ से हो गई तो फिर कोई भी हम पर उंगली नहीं उठा पाएगा और उस लड़की को झूठा साबित कर दिया जाएगा, वैसे भी उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। नैना की ये बात सुनकर आकांक्षा ने उन्हें ऐसे देखा मानो वो किसी अनजान सच्चाई से बिल्कुल अनभिज्ञ हो। फिर वो अचानक तेज आवाज में बोली, बस कीजिए मम्मा, आपको क्या लगता है एक और शादी एक और चाल मुझे सिद्धार्थ के करीब ले आएगी? नहीं, आपकी इन हरकतों ने मुझे उससे बहुत दूर कर दिया है, वो मुझसे शादी करना तो दूर मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वो आगे बोली, आपको क्या लगता है इतनी बेइज्जती के बाद सिद्धार्थ खुराना मुझसे शादी करेगा, और उर्वशी खुराना जो अपने स्टेटस और इज्जत को सबसे ऊपर रखती हैं, क्या वो मुझे अपनी बहू बनाएंगी? एक ऐसी लड़की को बहू बनाएंगी वो जिसकी माँ ने किसी आदमी को फंसाकर उसके साथ रिश्ता बनाया, फिर उसे ब्लैकमेल करके उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उसे जेल भिजवा दिया। आकांक्षा की बातों में गुस्सा दर्द और कड़वी सच्चाई साफ झलक रही थी। आपको क्या लगता है माँ, सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा? आज पहली बार आकांक्षा के चेहरे पर इतना गहरा दर्द देखकर नैना का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि अब तक उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही देखी थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से बिखरी हुई। लेकिन आज जब आकांक्षा इस तरह से उसकी बेइज्जती कर रही थी तो नैना का चेहरा शर्म और ग्लानी से बुरी तरह काला पड़ चुका था। वहीं ईशान अपनी बेटी को संभालते हुए बोला,
शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, इस तरह गुस्सा करने या नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, और ये वक्त किसी पर सवाल उठाने का नहीं बल्कि साथ मिलकर लड़ने का है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम उर्वशी खुराना को यकीन दिलाएंगे कि उस लड़की ने जो किया वो गलत किया, और शायद तुम भूल रही हो उसने उर्वशी खुराना से भी पंगा लिया है। उनके बेटे के साथ रिश्ते की बात उसने पूरे मीडिया के सामने कही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लड़की से कोई मतलब रखेंगी। मुझे अभी भी लगता है कि वो तुम्हें ही अपनी बहू बनाएंगी।
कहीं ना कहीं ईशान अपनी बेटी और अपनी पत्नी दोनों को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो जो कुछ भी कह रहा था सिर्फ उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कह रहा था, लेकिन आकांक्षा किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, ना वो कहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस वक्त के लिए खामोश हो गई। तभी ईशान आगे बढ़ा, उसने उसके कंधे पकड़े और बोला,
चलो मेरे साथ।
हालांकि वो खुद भी काफी कमजोर था, लेकिन इस वक्त बात उसकी बेटी की जिंदगी की थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर किसी तरह सिद्धार्थ खुराना शादी के लिए मान जाए तो उनकी सारी परेशानियां और बेइज्जती खत्म हो सकती है। यही सोचकर वो लोग तुरंत उर्वशी खुराना के केबिन की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर रणविजय अपनी दादी से मिलने पहले ही पहुंच चुका था, क्योंकि उन्हें भी होश आ गया था। दादी गुस्से भरी नजरों से रणविजय को देख रही थी। उन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन सिद्धार्थ कहीं दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उनके दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। वो सोचने लगी, सिद्धार्थ जो उन्हें जान से भी ज्यादा चाहता है, उनकी एक खांसी पर पूरी रात जाग जाता है, आज इतनी बड़ी बात होने पर भी उनके पास नहीं आया। ये सोचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रणविजय ने धीरे से कहा,
दादी।
फिर संभलते हुए बोला,
आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए, हम आपको घर ले चलेंगे, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है।
लेकिन कहीं ना कहीं रणविजय के दिल में भी डर था कि दादी सब सच जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगी, और वही हुआ। दादी ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से उसकी ओर देखकर बोली,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? तुम तो हमसे नफरत करते हो, बदला लेने आए थे ना यहाँ? अगर तुम्हारे मन में इतनी नफरत थी तो क्या तुम पहले नहीं बता सकते थे? हमने तुम्हें समझाया था कि जो कुछ हुआ वो बचपन की बात थी और बच्चों की नफरत वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी माँ की नफरत को इतना बढ़ा दिया कि उसे अनामिका तक पहुँचा दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? उस लड़की ने पूरे खुराना परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। दादी की बात सुनकर रणविजय का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शांत हो जाइए दादी, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा, मीडिया से ये सारी बातें हटवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी रोते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा, हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, जिसे हमने इतने सालों से संभाल कर रखा था, सब मिट्टी में मिल गया, अब क्या होगा? उसी वक्त ईशान, नैना और आकांक्षा भी वहां पहुंच गए। ईशान ने अंदर आते ही हाथ जोड़ लिया और बोला, माफ कीजिएगा मिसेस खुराना, लेकिन सिर्फ आप ही बर्बाद नहीं हुई हैं, हम लोग भी बर्बाद हुए हैं। उस लड़की ने झूठे सबूत और न जाने क्या क्या दिखाकर सबके सामने हमें गिरा दिया। उसने बहुत चालाकी और सोच समझकर ये सब किया है, अपनी नफरत में उसने हमें बर्बाद कर दिया। अब उन तीनों को देखकर उर्वशी खुराना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो तेज आवाज में बोली, जस्ट शट अप, बंद करो अपनी फालतू की बकवास, तुम लोग एक नंबर के घटिया लोग निकले, पैसों के लिए इतना गिर जाओगे कि अपनी ही बीवी को आरव मल्होत्रा के पास भेज दोगे, और अब कहते हो कि उस लड़की ने झूठ बोला। क्या तुम भूल गए कि तुम ना खुद मल्होत्रा के पैरों में गिरकर माफी मांगी थी? उसका क्या मतलब था? क्या तुम हमें पागल समझते हो ईशान ओबेरॉय? हालांकि दादी खुद बहुत बीमार थीं, लेकिन सख्त शब्द कहने से वो बिल्कुल पीछे नहीं हटीं। दादी को इस तरह गुस्से में देखकर आकांक्षा तुरंत संभली। वो आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गई और बोली, दादी प्लीज, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, और वैसे भी इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ छलक ने ही किया है। क्या आकांक्षा की चाल कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।